हवेली के बाहर काली गाड़ी आकर रुकी। गेटकीपर ने झट से सलाम किया। नमस्ते ठाकुर साहब। विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी घड़ी पर नज़र डाली, फिर सीधा अंदर चला गया। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में वही पुराना रोब। एक ऐसा चेहरा जिससे कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था। शाम का वक्त था, आंगन में रोशनी जगमगा रही थी, नौकरानियां रंगोली बना रही थी और बीचों बीच रत्ना देवी पूजा की तैयारी कर रही थी। जैसे ही विश्वनाथ अंदर आया, सारी हवेली एक पल को शांत हो गई। रत्ना देवी ने ऊपर देखा। अरे आ गए तुम, अच्छा हुआ, कुछ बातें करनी है। विश्वनाथ ने कोट उतारा, नौकर को थमाया। क्या बात है माँ? रत्ना देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले पानी पी लो, बड़ी खबर है। तभी पीछे से शकुंतला की आवाज आई। भैया बड़ी खबर नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके लहजे में मिठास कम तन ज्यादा था। वो सोफे पर आ बैठी और मुस्कुराती हुई बोली, आप तो कहते थे ना माँ, वो लड़की मुझसे बहुत छोटी है, मैं उसे सिर्फ जिम्मेदारी समझकर घर ला रहा हूँ। और अब देखिए, साल भर भी नहीं हुआ और आपने उसे माँ बना दिया। विश्वनाथ के चेहरे की रेखाएं तन गईं। उसने सिर घुमाकर शकुंतला की ओर देखा। क्या बकवास है ये? शकुंतला ने कंधे उचका दिए। बकवास नहीं, सच। हवेली में सबको खबर मिल गई है। डॉक्टर ने कहा है कि शामली के माँ बनने की संभावना है। कमरा एकदम भारी हो गया, कुछ पल के लिए जैसे हवा भी रुक गई हो। विश्वनाथ की भौहें सिकुड़ गईं। संभावना? उसने दोहराया। मतलब अभी पक्का भी नहीं है और तुम लोगों ने पूरे शहर में खबर फैला दी? रत्ना देवी ने तुरंत बात संभाली। अरे बेटा, खबर फैलाई नहीं, बस खुशी जताई है। कितने सालों बाद हमारे घर में ऐसा मौका आया है। पर विश्वनाथ का चेहरा अब कठोर हो चुका था। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। माँ मैं जानता हूं, उसकी आवाज भारी थी पर उसमें शक भी था। लेकिन ये कैसे संभव है? उसकी आंखें दूर कहीं देखने लगी। शकुंतला ने होठों पर अजीब मुस्कान लाकर कहा, भैया कभी कभी कुछ बातें समझाने की नहीं, सहने की होती हैं। विश्वनाथ की मुट्ठियां कस गईं। तुम क्या कहना चाह रही हो शकुंतला? कुछ नहीं, उसने ठंडी आवाज में कहा। बस इतना कि हवेली में सब मान चुके हैं और माँ तो तुम्हारे नाम का दीपक जला चुकी हैं। रत्ना देवी ने बीच में कहा, बस अब चुप रह तू, खुशखबरी का वक्त है। तो उसमें भी ताने दे रही है? शकुंतला ने मुंह फेर लिया। मैं तो बस सच्चाई बोल रही हूं माँ, भैया से भला कौन जाने कि उनके और शामली के बीच कितनी नजदीकियां हैं। रत्ना देवी की आंखें चमक उठी। शकुंतला, उन्होंने तीखी आवाज में कहा, तेरी जबान पर लगाम रख, वो तेरे भाई हैं और शामली हमारी बहू। अब जो होना था हो गया, भगवान ने दिया है तो स्वीकार कर। शकुंतला चुप हो गई, पर उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी थी। विश्वनाथ कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, मौन, सख्त और अंदर से उबलता हुआ। माँ, उसने धीमे स्वर में कहा, ये बात मुझे खुद शामली से सुननी होगी। रत्ना देवी ने कहा, ठीक है सुन लेना, पर पहले शांत हो जा बेटा, मैं जानती हूं तू कैसा है। तूने शादी भी मेरे कहने पर की थी और अब जब ईश्वर ने तुम्हें वारिस देने की कृपा की है तो उसमें शक क्यों? विश्वनाथ की आवाज भारी हो गई। नौकरानी मधु ट्रे में चाय का कप लेकर हॉल में आई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ठाकुर साहब, उसने मीठी आवाज में कहा, बधाई हो। विश्वनाथ, जो अब भी माँ की बातों से झल्लाया हुआ था, ने उसकी ओर देखा। क्यों बधाई? मधु मुस्कुराई, आंखों में चमक लिए बोली, अरे बहू जी माँ बनने वाली है ना, भगवान ने सुना आपकी मन की बात, अब तो हवेली में नन्हे कदमों की आहट गूंजेगी। मैं तो सोच रही हूं उनका पूरा ख्याल रखूंगी, सुबह का दूध, दवाई, पूजा का प्रसाद सब मैं देखूंगी। वो बोलती जा रही थी। आप तो बस आज खुश रहिए ठाकुर साहब। और हाँ, जब बहू जी का बच्चा हो जाए तो मुझे इनाम में बस एक हार दे दीजिए, वो वाला जो आप दिल्ली से लाए थे। विश्वनाथ की आंखों में अब गुस्से की लपटें थी। उसने धीरे से कप रख दिया और गरज कर बोला, चुप रहो मधु। मधु के हाथ कांप गए। ट्रे में रखी चम्मच गिरकर फर्श पर टनटन की आवाज में गूंज उठी। इन बातों पर खुशियां मनाने का वक्त नहीं है, विश्वनाथ ने तीखे स्वर में कहा। किसने कहा तुम्हें कि बहू मां बनने वाली है? कहां लिखा देखा तुमने रिपोर्ट? मधु हड़बड़ा गई। नहीं साहब, वो तो सब बोल रहे थे हवेली में। तो मैंने भी? तो तूने भी अपनी जबान खोल दी? विश्वनाथ की आवाज ठंडी पड़ गई, पर उसमें ऐसा दबाव था कि हवा भी रुक गई। जा, जो काम कहा गया है वही कर और अपनी जबान बंद रख। मधु सिर झुकाकर पीछे हट गई। ट्रे कांप रही थी और उसकी आंखों में डर की परतें थीं। विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली, अपना कोट उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके भीतर उबाल बढ़ता जा रहा था। संभावना और पूरे घर में जश्न। कमरा अंधेरा था, बस पर्दों के बीच से आती हल्की रोशनी फर्श पर गिर रही थी। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। श्यामली? कोई जवाब नहीं। वो चारों तरफ देखने लगा। बिस्तर पर उसकी साड़ी पड़ी थी, ड्रेसिंग टेबल पर आधी भरी ग्लास में पानी रखा था, आईने के पास एक छोटी सी टिकिया टूथपेस्ट की गिरी हुई थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर उसे बाथरूम के भीतर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, किसी के उल्टी करने की। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, बस आधा खुला हुआ। अंदर श्यामली झुकी हुई थी, बाल बिखरे, चेहरे पर पसीना, हाथ से दीवार पकड़कर जैसे खुद को संभाल रही थी। वो बेहद थकी और कमजोर लग रही थी। विश्वनाथ वहीं रुक गया, कुछ पल उसे देखता रहा। उसके गुस्से के बीच अचानक एक झटका सा आया, पर अगले ही क्षण वो फिर कठोर हो गया। धीरे से बुदबुदाया, तो ये सच है। फिर एक ठंडी हंसी आई उसके होठों पर। मैं इसे मासूम समझता था, और ये तो, उसका गला सूख गया। ये सब क्या हो रहा है श्यामली? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस पानी की टंकी की टपकती बूंदों की आवाज और श्यामली की भारी सांसें। विश्वनाथ के दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्या वाकई ये मेरा बच्चा है या किसी और का? वो एक पल को खुद से लड़ा, पर गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने बाथरूम के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, मगर तभी अंदर से फिर उल्टी की आवाज आई। उसने रुककर दरवाजे के फ्रेम पर हाथ रख दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, चेहरा लाल हो चुका था। वो बड़बड़ाया, मैं इसे मासूम समझता था, और ये? फिर सिर झटका और पीछे मुड़ गया। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। आईने में उसका चेहरा और भी सख्त लग रहा था। वो वहीं खड़ा रह गया, अंदर से आती हल्की खांसी की आवाजें सुनते हुए। नीचे से किसी नौकर की पुकार आई, ठाकुर साहब, पूजा शुरू होने वाली है। पर उसने जवाब नहीं दिया। पूरा घर अपने अपने काम में लग गया। कहीं रसोई में बर्तन खनक रहे थे, कहीं दीपक की लौ जल रही थी, पर ऊपर हवेली के उस कमरे में एक तूफान खड़ा था, जहां विश्वनाथ अपनी ही सोच में डूबा था, और अंदर बाथरूम में श्यामली अब भी उल्टी कर रही थी।